इस प्रकार 11वां श्लोक पूरा हुआ। अब 12वां श्लोक संबंध। पूर्व श्लोक में कहा गया कि कर्म फल का त्याग करने वाला ही वास्तव में त्यागी है। अगर मनुष्य कर्म फल का त्याग न करे तो क्या होता है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। अनिष्टमिष्टम मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कहीं भी नहीं होता। व्याख्या। अनिष्टमिष्टम मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलम्। कर्म का फल तीन तरह का होता है, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट कर्म फल है, जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता है वह अनिष्ट कर्म फल है, और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का है वो मिश्रित कर्म फल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्रायः मिश्रित ही फल होता है। जैसे धन होने से अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियां आती हैं। अनुकूल को इष्ट कहते हैं, प्रतिकूल को अनिष्ट कहते हैं। धन से निर्वाह होता है, ये अनुकूलता है, और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है, ये प्रतिकूलता है। तात्पर्य यह है कि इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता है, कारण कि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। यह जन्म भी दुखालय है, दुखालयम अशाश्वतम 8:15, और सुख रहित है, अनित्यम सुखम लोकमिमम 9वें अध्याय का 33वां श्लोक। अतः चाहे इष्ट परिस्थिति हो चाहे अनिष्ट परिस्थिति हो, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती नहीं। यहाँ इष्ट और अनिष्ट कहने का मतलब है कि इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। वास्तव में कर्मों का फल मिश्रित ही होता है, क्योंकि कोई भी कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं होता। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता 18:48। भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य। उपर्युक्त सभी फल अत्यागियों को अर्थात फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को ही मिलते हैं, सन्यासियों को नहीं। कारण कि जितने भी कर्म होते हैं वे सब प्रकृति के द्वारा अर्थात प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ही होते हैं, तथा फल रूप परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही बनती है। इसलिए कर्मों का और उनके फलों का संबंध केवल प्रकृति के साथ है, स्वयं चेतन के साथ नहीं है। परंतु जब स्वयं उनसे संबंध तोड़ लेता है तो फिर वह भोगी नहीं बनता, प्रत्युत त्यागी हो जाता है। अत्यागी का मतलब है, पीछे के दो श्लोकों में जिन त्यागियों की बात आई है उनके समान जो त्यागी नहीं है, अर्थात जिन्होंने कर्म फल का त्याग नहीं किया है, ऐसे अत्यागी मनुष्यों के सामने इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित तीनों कर्म फल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आते रहते हैं, जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं। उनसे सुखी दुखी होना ही वास्तव में बंधन है। वास्तव में अनुकूलता से सुखी होना ही प्रतिकूलता में दुखी होने का कारण है, क्योंकि परिस्थिति जन्य सुख भोगने वाला कभी दुख से बच ही नहीं सकता। जब तक वह सुख भोगता रहेगा तब तक वह प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होता ही रहेगा। चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि उसको कभी छोड़ नहीं सकते और वह भी इनसे कभी छूट नहीं सकता। प्रेत्य भवती कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म फल के त्यागी नहीं है, उनको इष्ट, अनिष्ट और मिश्र ये तीनों कर्म फल मरने के बाद जरूर मिलते हैं, परंतु इसके साथ न तो संन्यासी नाम क्वचित पदों में कहा गया है कि जो कर्म फल के त्यागी हैं, उनको कहीं भी अर्थात यहाँ और मरने के बाद भी कर्म फल नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि अत्यागियों को मरने के बाद तो कर्म फल मिलता ही है, पर यहाँ जीते जी भी कर्म फल मिल सकता है। न तो संन्यासी नाम क्वचित, संन्यासियों माने त्यागियों को कहीं भी अर्थात इस लोक में या परलोक में, इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। हाँ, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, परंतु वे अपने विवेक के बल से उन परिस्थितियों के भोगी नहीं बनते, उनसे सुखी दुखी नहीं होते, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। संन्यासियों अर्थात त्यागियों को फल क्यों नहीं भोगना पड़ता? कारण कि वे अपने लिए कुछ भी नहीं करते। उनको अच्छी तरह से ये विवेक हो जाता है कि अपना जो सत स्वरूप है उसके लिए किसी भी क्रिया और वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। अपने लिए पाने की इच्छा से साधक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्व को ही स्थिर रखता है, क्योंकि वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग मानता है। जब वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग नहीं मानता अर्थात सबके हित में अपना हित मानता है, तब वह स्वतः सर्वभूत हिते रता हो जाता है। फिर उसके स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाला परहित चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तीनों ही संसार के मात्र प्राणियों के हित के लिए होती है। कारण कि शरीर आदि सब की सब सामग्री संसार से अभिन्न है, उस सामग्री से अपना हित चाहना यही गलती होती है, जो कि अपनी परिच्छिन्नता में हेतु है। यहाँ संन्यासी नाम पद में त्यागी माने कर्मयोगी और संन्यासी माने सांख्य योगी दोनों की एकता की गई है। जैसे कर्मयोगी कर्मों से असंग रहता है तो सांख्य योगी भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी फल के साथ संबंध नहीं रखता तो सांख्य योगी कर्म मात्र के साथ किंचित भी संबंध नहीं रखता। कर्मयोगी फल से संबंध विच्छेद करता है अर्थात ममता का त्याग करता है तो सांख्य योगी कर्तृत्वाभिमान अर्थात अहंता का त्याग करता है। ममता का त्याग होने पर अहंता का भी त्याग स्वतः हो जाता है और अहंता का त्याग होने पर ममता का भी त्याग स्वतः हो जाता है। इसलिए भगवान ने कर्मयोग में ममता के त्याग के बाद अहंता का त्याग बताया है, निर्ममो निरहंकार है, और सांख्य योग में अहंता के त्याग के बाद ममता का त्याग बताया है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः 18:53। इन दोनों की इस त्याग करने की प्रक्रिया में तो फर्क है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति का कार्य इनमें से किसी के भी साथ इन दोनों का संबंध नहीं रहता, अर्थात तत्व में कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों एक हो जाते हैं। पहले अर्जुन ने ये पूछा था कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ, अतः भगवान ने यहाँ संन्यासी नाम पद से दोनों का यह तत्व बताया कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है। ऐसे ही सांख्य योगी का ये भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सांख्य योगी प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के साथ किंचन मात्र भी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं करना है यह कहना नहीं बनता। यहाँ त्यागी नाम पद न देकर सन्यासी नाम पद देने का ये तात्पर्य है कि जो निर्लिप्तता सांख्य योग से होती है वही निर्लिप्तता त्याग से अर्थात कर्मयोग से भी होती है। गीता पांचवें अध्याय का चौथा पांचवा श्लोक। दूसरी बात, यहां तक भगवान ने कर्मयोग से निर्लिप्तता बताई, अब सन्यासी नाम पद देकर आगे सांख्य योग से निर्लिप्तता बताने का बीज भी डाल देते हैं। कर्म संबंधी विशेष बात, पुरुष और प्रकृति ये दो हैं। इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने से जो प्राकृत वस्तुएं प्राप्त है उनमें ममता हो जाती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना ममता तादात्म्य रहता है तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है उसका नाम कर्म है। तादात्म्य के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है, अर्थात वह कर्म क्रिया मात्र रह जाता है, उसमें फल जनकता नहीं रहती। यह कर्म में अकर्म है। अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो क्रिया होती रहती है वह अकर्म में कर्म है। चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव न होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उनके कार्य शरीर में होती हैं, परंतु प्रकृति या शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव न होने से वे क्रियाएं कर्म बन जाती हैं। तीसरे अध्याय का 27वां, 13वें अध्याय का 29वां। कर्म तीन तरह के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं वे प्रारब्ध कहलाते हैं। जैसे जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति इत्यादि रूपों में वे कर्मों के फल परिणित होकर सामने आते हैं। क्रियमाण कर्म के दो स्वरूप होते हैं, पहला फलांश और दूसरा संस्कार अंश। फलंश भी दो प्रकार का होता है, एक तो दृष्ट फल एक अदृष्ट फल। दृष्ट फल एक तो तात्कालिक और एक कालांतरिक दो प्रकार का, और अदृष्ट फल भी लौकिक और पारलौकिक दो दो प्रकार के ये दृष्ट और अदृष्ट है। संस्कार अंश में कुछ शुद्ध संस्कार होते हैं और कुछ अशुद्ध संस्कार होते हैं, इसलिए संस्कार अंश के भी दो भेद हुए। क्रियमाण कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्र विधि के अनुसार किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो कर्म शास्त्र निषिद्ध है वे किए जाते हैं तो अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फल अंश होता है और दूसरा संस्कार अंश, दोनों भिन्न भिन्न है। क्रियमाण कर्म के फल अंश के दो भेद होते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक दृष्ट फल और कालांतरिक दृष्ट फल। जैसे भोजन करते हुए जो रस आता है वो सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, वह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना, यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है वह सब अधिक मिर्च खाने वाले पदार्थ खाता है, तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन भी होती है, आंखों से और नाक से पानी भी निकलता है, सिर से पसीना भी आता है। वह दृष्ट का तात्कालिक फल है और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग दुख आदि का होना, यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी दो फल हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत मंत्र जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाता है और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो तो वह पुत्र धन यश प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग निर्धनता आदि प्रतिकूलता की निवृत्ति होना, ये अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म किए जाए तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल, यहाँ भी कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनना, ये अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यही कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतोल नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है, अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था और दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया ही नहीं पर यह दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता और जो दंड मिलता है वो किसी न किसी पाप का ही फल होता है। एक सुनी हुई घटना है, किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गढ़ कर देता रहता था, ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया, रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रहे, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूं। वो सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़ा ही हूं। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर आ गए और उस सज्जन को पकड़कर, नहीं, उसने सबसे कहा कि इस घर से बक्सा लेकर आया है ये और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने बिल्कुल नहीं मारा है, इस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है। ऐसी बातें होने लगी जज के सामने, मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है, मैंने मारा नहीं है और मुझे दंड दे रहे हैं, और जिसने मारा है वो बेदाग छूटा जा रहा है, जुर्माना भी नहीं, ये अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में ये सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा, एक उपाय सोचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया, उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने उस कैदी से कहा, देख उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया है, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या तो तूने की थी और दंड भोगना पड़ा है मुझे, भगवान के यहाँ न्याय नहीं है। इधर खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़ों को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही ने ये कहा तो कैदी ने ये कहा। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ, सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या। वह सज्जन बोला, बहुत पहले की घटना है, एक दुष्ट आदमी था जो छिपकर मेरे घर पर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वो माना नहीं। एक रात वो घर पर आया था और मैं अचानक आ गया, मुझे गुस्सा आया हुआ था, मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हें इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से तुम्हारे लिए फांसी का हुक्म कैसे हो गया। अब मुझे संतोष हुआ है, उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाही को तो अलग से फांसी होगी ही। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था, फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, प्रत्युत उसने पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्य को अपने रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय का, राजा का है। अतः कर्तव्य पालन करने के कारण उस पाप का फल उसको मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ता। इस कहानी से पता चलता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में भोगना पड़े। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। इसी तरह धन संपत्ति मान आदर प्रशंसा निरोगता आदि अनुकूल परिस्थिति के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहाँ भोग लिया है उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो ही गया और जितना बाकी रह गया है वह परलोक में फिर भोगा जा सकता है। यदि पुण्य कर्मों का पूरा फल यहीं भोग लिया गया है तो पुण्य यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। क्रियमाण कर्म के संस्कार अंश के भी दो भेद है, शुद्ध और पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र विहित कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं, और शास्त्र नीति लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध एवं अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव बनता है। उन संस्कारों में से अशुद्ध अंश का सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाता है, परंतु जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना है उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुषों के स्वभाव में भी भिन्नता रहती है। इन विभिन्न स्वभावों के कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है, स्वभावो मूर्धनि वर्तते, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसमें कर्म करने की मुख्यता रहती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा ही। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, 18वें अध्याय का 60वां श्लोक। अब इसमें विचार करने की एक बात है कि एक ओर तो स्वभाव की महान प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ नहीं सकता, और दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है। अतः इन दोनों में किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी? उत्तर, इसमें विजय पराजय की बात नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों ही सिद्धांत प्रबल हैं। परंतु यहां स्वभाव न छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्ण में जन्मा है, जैसा रजवीर्य था उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता, अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वो स्वभाव नहीं बदला जा सकता और उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, तथा उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता। परंतु स्वभाव में जो अशुद्ध अंश है, राग द्वेष है, उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोग की दृष्टि से अपने प्रयत्न से राग द्वेष को मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपंथिनौ। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। चाहे भक्ति योग की दृष्टि से सर्वथा भगवान के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले, 18 का 62। इस प्रकार स्वभाव की प्रबलता भी सिद्ध हो गई और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे लोहे की तलवार को पारस छुआ दिया जाए तो तलवार सोना बन जाती है, परंतु उसकी मार, धार और आकार ये तीनों नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही और मार, धार, आकार में तलवार की प्रधानता रही। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं, परंतु स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, साधन पद्धति, मान्यता आदि के अनुसार आपस में उनके कर्मों की भिन्नता रहती है। जैसे किसी ब्राह्मण को तत्वबोध हो जाने पर भी वह खान पान आदि में पवित्रता रखेगा और अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में पवित्रता है। परंतु किसी हरिजन आदि साधारण वर्ण वाले को तत्वबोध हो जाए तो वह खान पान आदि में पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरों की झूठन भी खा लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं होगा। जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादि काल से बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ है और बार बार ऊंच नीच योनियों में आता जाता है। इस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है, अर्थात उसमें जो कामना, ममता और तादात्म्य है उनको मिटा सकता है। कामना, ममता और तादात्म्य के मिटने के बाद जो स्वभाव रहता है वह स्वभाव दोषी नहीं रहता, इसलिए उस स्वभाव को मिटाना नहीं है और मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वथा भगवान के शरण हो जाता है तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बन जाता है। स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं होता। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्। 18:47। सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता। फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं। सुहृदम् सर्वभूतानाम् 5:29। तो भक्त भी समस्त प्राणियों का सुहृद हो जाता है। सुहृदः सर्वदेहिनाम्। श्रीमद् भागवत 3:25। इसी तरह कर्मयोग की दृष्टि से जब मनुष्य राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि हो जाती है, जिससे अपने स्वार्थ का भाव मिटकर केवल दुनिया के हित का भाव स्वतः हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणी मात्र का हित करने का हो जाता है। जब उसकी सब चेष्टाएं प्राणी मात्र के हित में हो जाती हैं, तब उसकी भगवान की सर्वभूत सुरेता शक्ति के साथ एकता हो जाती है। उसके इस स्वभाव में भगवान की सुरेता शक्ति कार्य करती है। वास्तव में भगवान की वह सर्वभूत सुरेता शक्ति मनुष्य मात्र के लिए समान रीति से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग द्वेष के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, फिर वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुषों में अहंकार और राग द्वेष नहीं होते, इसलिए उनमें यह शक्ति कार्य करने लगती है। संचित कर्म। संचित कर्म के दो अंश होते हैं, फल अंश और संस्कार अंश। फल अंश से प्रारब्ध बनता है और संस्कार अंश से स्फुरणाएं होती है। अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। उन संचित कर्मों में फल अंश से तो प्रारब्ध बनता है और संस्कार अंश से स्फुरणा होती रहती है। उन स्फुरणाओं में जो वर्तमान में किए गए जो नए क्रियमाण कर्म संचित में भर्ती हुए हैं, प्राय उनकी स्फुरणा होती है। कभी कभी संचित में भर्ती हुए पुराने कर्मों की स्फुरणा भी हो जाती है। जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दें और उसके ऊपर क्रमशः गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा डाल दें, तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था वही बाजरा सबसे पहले निकलेगा, पर बीच में कभी कभी प्याज का भी भबका आएगा। परंतु ये दृष्टांत पूरा नहीं घटता है, क्योंकि प्याज, गेहूं आदि सावयव पदार्थ हैं और संचित कर्म निरावयव है। यह दृष्टांत केवल इतने ही अंश में बताने के लिए है कि नए क्रियमाण कर्मों की स्फुरणा ज्यादा होती है और कभी कभी पुराने कर्मों की भी स्फुरणा हो सकती है। बस इतने अंश में ही लेना चाहिए। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फुरणा होती है। नींद में जागृत अवस्था के दब जाने के कारण संचित की वही स्फुरणा स्वप्न में दिखने लग जाती है, उसी को स्वप्नावस्था कहते हैं। स्वप्नावस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने के कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे शहर तो दिल्ली का दिखता है और बाजार बंबई का, और उस बाजार में दुकानें कलकत्ते की दिखती हैं। कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है आदि आदि। जागृत अवस्था में हरेक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्फुरणाएं होती रहती है। जब जागृत अवस्था में शरीर इंद्रियां और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है तब मनुष्य जैसा मन में आता है वैसे बोलने लगता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से वह सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसके शरीर इंद्रियां और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है वह जो उचित समझता है वही बोलता है और जो अनुचित समझता है वो नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहने से वह सावचेत रहता है इसलिए वो चतुर पागल है। इस प्रकार मनुष्य जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक वह अपने को स्फुरणाओं से बचा नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति होने पर बुरी स्फुरणाएं सर्वथा मिट जाती हैं। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष के मन में अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारब्धवश व्याधि आदि किसी कारणवश कभी बेहोशी या उन्माद आदि हो भी जाए तो उसमें भी वह न तो शास्त्र निषिद्ध बोलता है और न शास्त्र निषिद्ध कुछ करता ही है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होने से शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में रहता ही नहीं है। अब प्रारब्ध कर्म अनुकूल परिस्थिति, मिश्रित परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में तीन प्रकार का होता है। इन तीनों के फिर तीन तीन भेद होते हैं। अनुकूल परिस्थिति स्वेच्छापूर्वक क्रिया, अनिच्छापूर्वक क्रिया और परेच्छापूर्वक क्रिया, ये अनुकूल परिस्थिति का स्वरूप होता है। ऐसे ही मिश्रित परिस्थिति में भी स्वेच्छापूर्वक क्रिया, अनिच्छापूर्वक क्रिया, परेच्छापूर्वक क्रिया। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति भी स्वेच्छापूर्वक क्रिया, अनिच्छापूर्वक क्रिया और परेच्छापूर्वक क्रिया, तीन भेद इसके होते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए सन्मुख होते हैं उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है, परंतु उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है। स्वेच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक, जिसको दैवेच्छापूर्वक भी कह सकते हैं, और परेच्छापूर्वक। उदाहरण पहला, किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया। ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है, परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई। दूसरा उदाहरण अनिच्छा का, दैवेच्छा। कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों के ये प्रारब्ध का फल है, परंतु धन टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना ये प्रवृत्ति दैवेच्छा पूर्वक हुई है। तीसरी परेच्छा पूर्वक। किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया, उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया, तो इन दोनों में से बच्चे को धन मिलना और दूसरे का चोरी में धन चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है, परंतु गोद में जाना और चोरी होना ये प्रवृत्ति परेच्छा पूर्वक हुई है। यहां एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता प्रत्युत परिस्थिति होती है, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों का फल परिस्थिति के रूप से ही सामने आता है। अगर नए क्रियमाण कर्म को प्रारब्ध का फल मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो और ऐसा मत करो ये शास्त्रों का या गुरुजनों का विधि निषेध निरर्थक हो जाएगा। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उसी के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे, तो वे कर्म फिर आगे नए कर्म पैदा कर देंगे जिससे यह कर्म परंपरा चलती रहेगी, तो इसका कभी अंत ही नहीं आएगा। प्रारब्ध कर्म से मिलने वाले फल के दो भेद हैं, प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणी के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वह प्राप्त फल है, और इसी जन्म में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वो अप्राप्त फल है। क्रियमाण कर्मों का जो फल अंश संचित में जमा रहता है वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में मनुष्य के सामने आता है। अतः जब तक संचित कर्म रहते हैं तब तक प्रारब्ध बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में परिणत होता ही रहता है। यह परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती। सुखी दुखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है वह अविवेकी पुरुष तो सुखी दुखी होता ही रहता है, परंतु जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वह विवेकी पुरुष कभी सुखी दुखी नहीं होता। अतः उसकी स्थिति स्वतः साम्यावस्था में होती है जो कि उसका स्वरूप है। कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, अथवा प्रारब्ध प्रबल है या पुरुषार्थ, इस विषय में बहुत सी शंकाएं हुआ करती हैं। उनके समाधान के लिए पहले ये समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य में चार तरह की चाहना हुआ करती है, एक धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। प्रचलित भाषा में इन्हीं चारों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से कहा जाता है। पहला अर्थ, धन को अर्थ कहते हैं। वह धन दो प्रकार का होता है, एक स्थावर दूसरा जंगम। सोना चांदी रुपया जमीन जायदाद मकान आदि स्थावर है, और गाय भैंस घोड़ा ऊंट भेड़ बकरी आदि जंगम है। दूसरा धर्म, सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ दान व्रत तीर्थ आदि किए जाते हैं उसको धर्म कहते हैं। काम, सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। वह सुख भोग आठ तरह का होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बड़ाई और आराम। पहला शब्द, शब्द दो तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। व्याकरण कोश साहित्य उपन्यास गल्प कहानी आदि वर्णात्मक शब्द हैं। खाल तार और फूंक के तीन बाजे और ताल का आधा बाजा, ये साढ़े तीन प्रकार के बाजे ध्वन्यात्मक शब्द को प्रकट करने वाले हैं। वर्णात्मक शब्द में दस रस होते हैं, श्रृंगार हास्य करुण रौद्रवीर भयानका विभीत्साद भूतम शांतम श्रृंगार हास्य करुण रौद्रवीर भयानक विभीत्स शांत और वात्स ये दसों ही रस चित्त द्रवित होने से होते हैं। इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों को सुनने से जो सुख मिलता है वह सुख शब्द का है। दूसरा स्पर्श, स्त्री पुत्र मित्र आदि के साथ मिलने से तथा ठंडा गर्म कोमल आदि से त्वचा के साथ संयोग होने से जो सुख होता है वो स्पर्श का सुख है। रूप, आंखों से खेल तमाशा सिनेमा बाजीगरी वन पहाड़ सरोवर मकान आदि की सुंदरता देखकर जो सुख होता है वह रूप का सुख है। चौथा रस, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय इन छह रसों को चखने से जो सुख होता है वो रस का सुख है। गंध, पांचवा गंध, नाक से इत्र तेल फुलेल लवेंडर पुष्प आदि सुगंध वाले और लहसुन प्याज आदि दुर्गंध वाले पदार्थों को सूंघने से जो सुख होता है वो गंध का सुख है। अब मान, छठा मान, शरीर का आदर सत्कार होने से जो सुख होता है वो मान का सुख है। सातवां बढ़ई, नाम की प्रशंसा वाह वाह होने से जो सुख होता है वो बढ़ई का सुख है। और आठवां आराम, शरीर से परिश्रम न करने से निकम्मे पड़े रहने से जो सुख होता है वो आराम का सुख है। अब चौथा मोक्ष, आत्म साक्षात्कार तत्वज्ञान कल्याण उद्धार मुक्ति भगवत दर्शन भगवत प्रेम आदि का नाम मोक्ष है। इन चारों अर्थ धर्म काम और मोक्ष में देखा जाए तो अर्थ और धर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं। अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है, परंतु धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है और अर्थ को भी कामना पूर्ति में लगाया जाए तो वह अर्थ भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ दोनों को खा जाती है। इसलिए गीता में भगवान ने कामना को महाशन बहुत खाने वाला बताते हुए उसके त्याग की बात विशेषता से कही है। तीसरे अध्याय के 37वें से 43वें श्लोक तक, यदि धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो वह अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धन को कामना का त्याग करके दूसरों के उपकार में हित में सुख में खर्च किया जाए तो वह भी अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों में अर्थ माने धन और काम माने भोग इनकी प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता है और पुरुषार्थ की गौणता है तथा धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता है और प्रारब्ध की गौणता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अलग अलग है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रधान हैं। इसलिए कहा गया है संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्य स्वाध्याय जपदानयो हो। अर्थात अपनी स्त्री पुत्र परिवार भोजन और धन में तो संतोष करना चाहिए और स्वाध्याय पूजा पाठ नाम जप कीर्तन और दान करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि प्रारब्ध के फल धन और भोग में तो संतोष करना चाहिए क्योंकि वे प्रारब्ध के अनुसार जितने मिलने वाले हैं उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ के लिए मनुष्य शरीर मिला है। कर्म के दो भेद होते हैं, शुभ और अशुभ। इनको पुण्य और पाप के नाम से भी कह सकते हैं। शुभ कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना और अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म बाहर से किए जाते हैं, इसलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त होता है। परंतु उन परिस्थितियों से जो सुख दुख होते हैं वे भीतर होते हैं, इसलिए उन परिस्थितियों में सुखी तथा दुखी होना शुभाशुभ कर्मों का अर्थात प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। अगर ये मूर्खता चली जाए, भगवान पर अथवा प्रारब्ध पर विश्वास हो जाए, तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी चित्त में प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा। कारण कि प्रतिकूल परिस्थिति में पाप कटते हैं और आगे पाप न करने में सावधानी आती है और पापों के नष्ट होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। साधक को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूल सामग्री को दूसरों के हित के लिए सेवा बुद्धि से खर्च करना अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उसका सुख बुद्धि से भोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करना और मेरे पूर्व कृत पापों का नाश करने के लिए भविष्य में पाप न करने की सावधानी रखने के लिए और मेरी उन्नति करने के लिए ही प्रभु कृपा से ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उससे दुखी होना दुरुपयोग है। मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। सुख भोगने के स्थान स्वर्गाधिक है और दुख भोगने के स्थान नरक तथा 84 लाख योनियां हैं। इसलिए वे भोग योनियां हैं और मनुष्य कर्म योनि है। परंतु यह कर्म योनि उनके लिए है जो मनुष्य शरीर में सावधान नहीं होते, केवल जन्म मरण के सामान्य प्रवाह में ही पड़े हुए हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसलिए इसको कर्म योनि न कहकर साधन योनि ही कहना चाहिए। प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उन दोनों में अनुकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर प्रतिकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में मनुष्य परतंत्र है, उसका स्वरूप से त्याग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि अनुकूल परिस्थिति दूसरे का हित करने के लिए उन्हें सुख देने के फलस्वरूप बनी है और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरों को दुख देने के फलस्वरूप बनी है। इसको एक दृष्टांत से इस प्रकार समझ सकते हैं। श्यामलाल ने रामलाल को 100 रुपए उधार दिए। रामलाल ने वादा किया कि अमुक महीने में ब्याज सहित रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत गया पर रामलाल ने रुपए नहीं लौटाए, तो श्यामलाल रामलाल के घर पहुंचा और बोला, तुमने वादे के अनुसार रुपए नहीं दिए, अब दो। रामलाल ने कहा कि अभी तो मेरे पास नहीं है, परसों दे दूंगा। श्यामलाल तीसरे दिन पहुंचा और बोला अब लाओ मेरे रुपए। रामलाल ने कहा अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा सका, परसों आपके रुपए जरूर दे दूंगा। तीसरे दिन फिर श्यामलाल पहुंचा और बोला भाई रुपए तो दो। रामलाल ने कहा कल जरूर दे दूंगा। दूसरे दिन श्यामलाल फिर पहुंचा और बोला अब लाओ भाई मेरे रुपए। रामलाल ने कहा रुपए मेरे पास जुटे नहीं तो मैं कहां से दूंगा, अब तो परसों आना। रामलाल की बात सुनकर श्यामलाल को क्रोध आ गया और परसों परसों करता है रुपए देता नहीं है, ऐसा कहकर उसने रामलाल को 5 जूते मार दिए। रामलाल ने कोर्ट में शिकायत कर दी। श्यामलाल को बुलाया गया और पूछा गया तुमने इसके घर पर जाकर जूता मारा, तो श्यामलाल ने कहा हां साहब मैंने जूता मारा। मजिस्ट्रेट ने पूछा क्यों मारा, श्यामलाल ने कहा इसको मैंने रुपए दिए थे और इसने वादा किया था कि मैं इस महीने में रुपए लौटा दूंगा, महीना बीत जाने पर मैंने इसके घर पर जाकर रुपए मांगे तो कल परसों कहकर मुझे बहुत तंग किया, इस पर मैंने क्रोध में आकर इसके 5 जूते मार दिए। तो सरकार 100 रुपए मैंने दिए थे, मैंने 5 जूते इसके मारे तो 5 रुपए काट लो और शेष 95 रुपए मुझे दिलवा दो। मजिस्ट्रेट ने हंसकर कहा अरे भाई ये फौजदारी कोर्ट है, यहां रुपए दिलाने का कायदा नहीं है, यहां दंड देने का ही कायदा है, इसलिए आपको जूता मारने के बदले में कैद या जुर्माना भोगना ही पड़ेगा। यदि आपको रुपए लेने हो तो दीवानी कोर्ट में जाकर नालिश करो माने शिकायत करो, वहां रुपए दिलाने का कायदा है क्योंकि वह विभाग अलग है। इस तरह अशुभ कर्मों का फल जो प्रतिकूल परिस्थिति है वो फौजदारी मुकदमे के समान है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते। और शुभ कर्मों का फल जो अनुकूल परिस्थिति है वह दीवानी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का विभाग अलग अलग है, इसलिए शुभ कर्मों और अशुभ कर्मों का अलग अलग संग्रह होता है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे से कटते नहीं है, माने पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्यों से पाप नहीं कटते। हां अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से प्रायश्चित रूप से शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट सकते हैं। संसार में एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी है और दुख पा रहा है, दूसरा आदमी पापात्मा है, दुराचारी है और बड़ा सुख भोग रहा है। इस बात को लेकर अच्छे अच्छे पुरुषों के भीतर भी ये शंका हो जाया करती है कि ईश्वर के घर में न्याय कहाँ है। वन पर्व में भी एक कथा आती है महाभारत में। एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि आप धर्म को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं रखते, पर आप वनवास में दुख पा रहे हैं और दुर्योधन धर्म की किंचन मात्र भी परवाह न करके केवल स्वार्थ परायण हो रहा है, वो राज्य कर रहा है, आराम से रह रहा है, सुख भोग रहा है, क्या बात है। इस पर युधिष्ठिर जी ने कहा कि जो सुख पाने की इच्छा से धर्म का पालन करते हैं वे धर्म के तत्व को नहीं जानते, वे तो पशुओं की तरह सुख भोग के लिए लोलुप हैं और दुख से भयभीत रहते हैं, फिर बेचारे धर्म के तत्व को कैसे जाने। इसलिए मनुष्य की मनुष्यता इसी में ही है कि वे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति की परवाह न करके शास्त्र के आज्ञा अनुसार अपने धर्म का पालन करते रहे। अभी पुण्यात्मा जो दुख पा रहा है वह पूर्व के किसी जन्म के किए हुए पाप का फल है, अभी किए हुए पुण्य का फल नहीं है। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है वह भी पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पुण्य का फल है, अभी किए हुए पाप का थोड़ा ही है। इसमें एक तात्विक बात है, कर्मों के फल रूप में जो अनुकूल परिस्थिति आती है उससे सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति आती है उससे दुख ही होता है, ऐसी बात है नहीं। जैसे अनुकूल परिस्थिति आने पर मन में अभिमान होता है, छोटों से घृणा होती है, अपने से अधिक संपत्ति वालों को देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती है, अंतःकरण में जलन होती है और मन में ऐसा दुर्भाव आता है कि उनकी संपत्ति कैसे नष्ट हो तथा वक्त पर उनको नीचा दिखाने की चेष्टा भी करें। इस तरह सुख सामग्री और धन संपत्ति पास में रहने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता, परंतु बाहरी सामग्री को देखकर दूसरे लोगों को ये भ्रम होता है ये बड़ा सुखी है। ऐसे ही कोई विरक्त और त्यागी मनुष्य को देखकर भोग सामग्री वाले मनुष्य को उस पर दया आती है कि बेचारे के पास धन संपत्ति आदि सामग्री नहीं है, बेचारा बड़ा दुखी है, परंतु वास्तव में विरक्त के मन में बड़ी शांति और बड़ी प्रसन्नता रहती है। वह शांति और प्रसन्नता धन के कारण किसी धन में नहीं रह सकती, इसलिए धन का होना मात्र सुख नहीं है और धन का अभाव मात्र दुख नहीं है। सुख नाम हृदय की शांति और प्रसन्नता का है और दुख नाम हृदय की जलन और संताप का है। पुण्य और पाप का फल भोगने में एक नियम नहीं है। पुण्य तो निष्काम भाव से भगवान के अर्पण करने से समाप्त हो सकता है, परंतु पाप भगवान के अर्पण करने से समाप्त नहीं होता, पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध किए हुए कर्म भगवान के अर्पण कैसे हो सकते हैं, और अर्पण करने वाला भी भगवान के विरुद्ध कर्मों को भगवान के अर्पण कैसे कर सकता है। प्रत्युत भगवान की आज्ञा के अनुसार किए हुए शुभ कर्म ही भगवान के अर्पण होते हैं। इस विषय में एक दृष्टांत दिया जाता है। एक राजा अपनी प्रजा सहित हरिद्वार गया, उसके साथ में सब तरह के लोग थे, उनमें एक चमार भी था। उस चमार ने सोचा कि ये बनिए लोग बड़े चतुर होते हैं, ये अपनी बुद्धिमानी से धनी बन गए हैं, अगर हम भी उनकी बुद्धिमानी के अनुसार चले तो हम भी धनी बन जाए। ऐसा विचार करके वह एक चतुर बनिए की क्रियाओं पर निगरानी रखकर चलने लगा। जब हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में पंडा दान पुण्य का संकल्प कराने लगा, तब उस बनिए ने कहा कि मैंने अमुक ब्राह्मण को 100 रुपए उधार दिए थे, आज मैं उनको दान के रूप में श्री कृष्णार्पण करता हूँ। तो पंडे ने संकल्प करवा दिया, अच्छी बात है। चमार ने देखा कि इसने 1 कौड़ी भी नहीं दी और लोगों में प्रसिद्ध हो गया कि इसने 100 रुपए का दान कर दिया, कितना बुद्धिमान बनिया है, मैं भी इससे कम नहीं रहूंगा। जब पंडे ने चमार से संकल्प भरवाना चालू किया, तब चमार ने कहा, बनिए ने मुझे 100 रुपए उधार दिए थे तो उन 100 रुपयों का मैं कृष्णार्पण करता हूँ। उसकी ग्रामीण बोली को पंडा पूरी तरह समझा नहीं और संकल्प भरवा दिया। इससे चमार बड़ा खुश हो गया, मैंने भी बनिए के समान 100 रुपए का दान पुण्य कर दिया। सब घर पर पहुंचे, समय पर खेती हुई, ब्राह्मण और चमार के खेत में खूब अनाज पैदा हुआ। ब्राह्मण देवता ने बनिए से कहा कि सेठ साहब, आप चाहे तो 100 रुपए का अनाज ले लो, इससे आपको नफा भी हो सकता है। मुझे तो आपका कर्जा चुकाना है। बनिए ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, जब मैं हरिद्वार गया था तब मैंने आपको उधार दिए हुए 100 रुपए वहां कृष्णार्पण कर दिए, वो दान कर दिया। ब्राह्मण बोला, सेठ जी मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए हैं, दान थोड़े ही लिया है, इसलिए 100 रुपए को मैं तो नहीं रखना चाहता, ब्याज सहित पूरा चुकाना चाहता हूं। सेठ ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो अपनी बहन अथवा कन्या को दे सकते हैं, मैंने 100 रुपए भगवान के अर्पण कर दिए हैं, इसलिए मैं तो लूंगा नहीं। अब ब्राह्मण और क्या करता, वह अपने घर लौट गया। अब जिस बनिए से चमार ने 100 रुपए लिए थे, वह बनिया चमार के घर पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए लाओ, तुम्हारे अनाज खूब हुआ है, 100 रुपए का अनाज ही दे दू। चमार ने सुन रखा था कि ब्राह्मण के देने पर भी बनिए ने उससे रुपए नहीं लिए, अतः उसने सोचा कि मैंने भी संकल्प कर रखा है तो मुझे रुपए क्यों देने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर चमार बनिए से बोला कि सेठ जी, मैंने तो अमुक सेठ की तरह गंगा में खड़े होकर सब रुपए कृष्णार्पण कर दिए, तो मुझे रुपए क्यों देने पड़ेंगे। बनिया बोला, तेरे अर्पण कर देने से कर्जा नहीं छूट सकता, क्योंकि तूने मुझसे कर्जा लिया है और तेरे छोड़ने से कैसे छूट जाएगा। मैं तो अपने 100 रुपए ब्याज सहित पूरे लूंगा, लाओ मेरे रुपए। ऐसा कहकर उसने चमार से अपने रुपयों का अनाज ले लिया। इस दृष्टांत से ये सिद्ध होता है कि हमारे पर दूसरों का जो कर्जा है वह हमारे छोड़ने से नहीं छूट सकता। ऐसे ही हम भगवद आज्ञानुसार शुभ कर्मों को तो भगवान के अर्पण करके उनके बंधन से छूट सकते हैं, पर अशुभ कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए शुभ और अशुभ कर्मों में एक कायदा एक कानून नहीं है। अगर ऐसा नियम बन जाए कि भगवान के अर्पण करने से ऋण और पाप कर्म छूट जाए तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जाएंगे, परंतु ऐसा संभव नहीं है। हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है, वो यह है कि अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पण कर देने पर, सर्वथा भगवान के शरण हो जाने पर पाप पुण्य सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दूसरी शंका ये होती है कि धन और भोगों की प्राप्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है, ऐसी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम देखते हैं कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि की चोरी करते हैं तो धन बच जाता है, और टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है। तो धन का आना जाना प्रारब्ध के अधीन कहां हुआ, ये तो चोरी के अधीन हुआ। इसका समाधान इस प्रकार है, वास्तव में धन प्राप्त करना और भोग भोगना, इन दोनों में ही प्रारब्ध की प्रधानता है, परंतु इन दोनों में भी किसी का धन प्राप्ति का प्रारब्ध होता है भोग का नहीं, और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है धन प्राप्ति का नहीं, और किसी का धन और भोग दोनों का ही प्रारब्ध होता है। जिसका धन प्राप्ति का प्रारब्ध तो है पर भोग का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास लाखों रुपए रहने पर भी बीमारी के कारण वैद्य डॉक्टर के मना करने पर वह भोगों को भोग नहीं सकता, उसको खाने में रूखा सूखा ही मिलता है। जिसका भोग का प्रारब्ध तो है पर धन का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास धन का अभाव होने पर भी उसके सुख आराम में किसी तरह की कमी नहीं रहती। जिनके मन में धन का महत्व नहीं है और अपने को धन के अधीन जो नहीं मानता है, उसके लिए धन का एक नया प्रारब्ध बनता है। कारण कि त्याग भी एक बड़ा भारी पुण्य है, जिससे तत्काल एक नया प्रारब्ध बन जाता है। धान नहीं, धीनो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीमण बैठे रामदास, आन मिले सब थोक। किसी को किसी की दया से, मित्रता से, काम धंधा मिल जाने से प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह की सामग्री मिलती रहती है। अगर धन का प्रारब्ध नहीं है तो चोरी करने पर भी धन नहीं मिलेगा, प्रत्युत चोरी किसी प्रकार से प्रकट हो जाएगी तो बचा हुआ धन भी चला जाएगा तथा दंड और जुर्माना अलग से लगेगा। यहां दंड मिले या न मिले, परलोक में तो दंड जरूर मिलेगा, उससे वह बच नहीं सकेगा। अगर प्रारब्धवश चोरी करने से धन मिल भी जाए तो भी उस धन का उपयोग नहीं कर सकेगा। वह धन बीमारी में, चोरी में, डाके में, मुकदमे में, ठगाई में चला जाएगा। तात्पर्य यह है कि वह धन जितने दिन टिकने वाला है उतने दिन टिकेगा, फिर नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स आदि की चोरी करने के जो संस्कार भीतर पड़े हैं, वे संस्कार जन्म जन्मांतर तक उसे चोरी करने के लिए उकसाते रहेंगे और वह उनके कारण दंड पाता ही रहेगा। अगर धन का प्रारब्ध है तो कोई गोद ले लेगा, अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नाम से वसीयत लिख देगा, अथवा मकान बनाते समय नींव खोदते ही जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, आदि आदि। इस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार जो धन मिलने वाला है वह किसी न किसी कारण से मिल ही जाएगा। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो भी तम लंघय तुम न शक्त है, तस्मान न सोचा मिन विस्मयो में यदस्मदीयम नहीं तत् परेशाम। प्राप्त होने वाला धन मनुष्य को मिलता ही है, दैव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए न तो मैं शोक करता हूं और न मुझे विस्मय ही होता है, क्योंकि जो हमारा है वह दूसरों का नहीं हो सकता। परंतु मनुष्य प्रारब्ध पर तो विश्वास करता नहीं, कम से कम अपने पुरुषार्थ भी विश्वास नहीं करता कि हम मेहनत से कमाकर खा लेंगे। इसी कारण उसकी चोरी आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हृदय में जलन रहती है, दूसरों से छिपाव करना पड़ता है, पकड़े जाने पर दंड पाना पड़ता है, आदि आदि। अगर मनुष्य विश्वास और संतोष रखे तो हृदय में महान शांति, आनंद, प्रसन्नता रहती है तथा आने वाला धन भी आ जाता है, और जितना जिनके प्रारब्ध है उतनी जीवन निर्वाह की सामग्री भी किसी न किसी तरह मिलती ही रहती है। जैसे व्यापार में घाटा लगना, घर में किसी की मृत्यु होना, बिना कारण अपयश और अपमान होना, आदि प्रतिकूल परिस्थिति को कोई भी नहीं चाहता, पर फिर भी वो आती ही है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। भागवत में आया है, सुखम इंद्रियकम राजन स्वर्गे नरक एवच देहिनाम यद यथा दुखम तस्मान नीचेत तद्भुदः। 11वां स्कंद 8वां अध्याय 1वां श्लोक। राजन, प्राणियों को जैसे इच्छा के बिना प्रारब्धानुसार दुख प्राप्त होता है, ऐसे ही इंद्रियजन्य सुख स्वर्ग में और नरक में भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सुखों की इच्छा करे ही नहीं। जैसे धन और भोग का प्रारब्ध अलग अलग होता है, किसी का धन का प्रारब्ध होता है और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ भी अलग अलग होता है। कोई धर्म के लिए पुरुषार्थ करता है और कोई मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है। धर्म के अनुष्ठान में शरीर धन आदि वस्तुओं की मुख्यता रहती है और मोक्ष की प्राप्ति में भाव तथा विचार की मुख्यता रहती है। एक करना होता है, एक होना होता है, दोनों विभाग अलग अलग हैं। करने की चीज है कर्तव्य और होने की चीज है फल। मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, 2:47। तात्पर्य यह है कि होने की पूर्ति प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होती है, उसके लिए यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए, और करने में शास्त्र तथा लोक मर्यादा के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। करना पुरुषार्थ के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए मनुष्य करने में स्वाधीन है और होने में पराधीन है। मनुष्य की उन्नति में खास बात है करने में सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध तीनों कर्मों से मुक्त होने का क्या उपाय है? प्रकृति और पुरुष ये दो है। प्रकृति सदा क्रियाशील है, पर पुरुष में कभी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। प्रकृति से अपना संबंध मानने वाला प्रकृतिस्थ पुरुष ही कर्ता भोक्ता बनता है। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उस पर कोई भी कर्म लागू नहीं होता। प्रारब्ध संबंधी अन्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, बोध हो जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है, यह कथन केवल अज्ञानियों को समझाने के लिए ही है। कारण कि अनुकूल या प्रतिकूल घटना का घट जाना ही प्रारब्ध है। प्राणी को सुखी या दुखी करना प्रारब्ध का काम नहीं है, प्रत्युत अज्ञान का काम है। अज्ञान मिट जाने पर मनुष्य सुखी दुखी नहीं होता, उसे केवल अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है, और ज्ञान होना कोई दोषी नहीं है, प्रत्युत सुख दुख रूप विकारी होना दोषी है। इसलिए वास्तव में ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता। दूसरी बात, जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि बन जाती है। जैसे एक ही बाजार में एक व्यापारी माल की बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खरीद लेता है, बाद में जब बाजार का भाव तेज हो जाता है तब बिक्री करने वाला व्यापारी है उसको नुकसान होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नफा होता है, और जब बाजार भाव मंदा हो जाता है तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नफा होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नुकसान होता है। अतः खरीदने और बेचने की बुद्धि प्रारब्ध से बनती है। नफा या नुकसान का जैसा प्रारब्ध होता है उसी के अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है, जिससे प्रारब्ध के अनुसार फल भुगताया जा सके। परंतु खरीदने और बेचने की क्रिया न्यायुक्त की जाए अथवा अन्यायुक्त की जाए, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि यह क्रियमाण कर्म है, नया कर्म है, प्रारब्ध नहीं है। एक आदमी के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया तो यह उसकी असावधानी है या प्रारब्ध? कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिए, पर जो हो गया उसे पूरी तरह से प्रारब्ध माने होनहारी मानना चाहिए। उस समय जो ये कहते हैं कि यदि तू सावधानी रखता तो गिलास नहीं टूटता, इससे ये समझना चाहिए कि अब आगे से मुझे थोड़ी सावधानी ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि दोबारा ऐसी गलती न हो जाए। वास्तव में जो हो गया उसे असावधानी न मानकर होनहार मानना चाहिए, इसलिए करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहे। चौथी बात, प्रारब्ध से होने वाले और कुपथ्य से होने वाले रोगों में क्या फर्क है? कुपथ्य जन रोग दवाई से मिट सकता है, परंतु प्रारब्ध जन्य रोग दवाई से नहीं मिटता। मृत्युंजय आदि का जप और यज्ञ यागादि अनुष्ठान करने से प्रारब्ध जन्य रोग भी कट सकता है अगर अनुष्ठान प्रबल हो तो। रोग भी दो प्रकार के होते हैं, आदि माने मानसिक रोग और व्याधि माने शारीरिक रोग। आदि के भी दो भेद हैं, एक तो शोक चिंता आदि और दूसरा पागलपन। चिंता शोक आदि तो अज्ञान से होते हैं और पागलपन प्रारब्ध से होता है। अतः ज्ञान होने पर चिंता शोक को मिट जाते हैं, पर प्रारब्ध के अनुसार पागलपन हो सकता है। हां, पागलपन होने पर भी ज्ञानी के द्वारा कोई अनुचित या शास्त्र निषिद्ध क्रिया नहीं होती। पांचवी बात, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या फर्क है। कोई व्यक्ति सांप काटने से मर जाए, अचानक ऊपर से गिरकर मर जाए, पानी में डूबकर मर जाए, हार्ट फेल होने से मर जाए, किसी प्रकार एक्सीडेंट आदि से मर जाए, तो यह उसकी आकस्मिक मृत्यु है। स्वाभाविक मृत्यु की तरह आकस्मिक मृत्यु भी प्रारब्ध के अनुसार उसकी आयु पूरी होने पर होती है। और कोई व्यक्ति जानबूझकर आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले, कुएं में कूद जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए, छत से कूद जाए, जहर खा जाए, शरीर में आग लगाकर मर जाए, तो वह उसकी अकाल मृत्यु है। यह मृत्यु आयु के रहते हुए ही होती है। आत्महत्या करने वाले को मनुष्य की हत्या का पाप लगता है, अतः ये नया पाप कर्म है, ये प्रारब्ध नहीं है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, अतः उसको आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप है। कई बार आत्महत्या करने की चेष्टा करने पर भी मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसका दूसरे मनुष्य के प्रारब्ध के साथ कोई संबंध जुड़ा हुआ रहता है, अतः उसके प्रारब्ध के कारण वह बच जाता है। जैसे भविष्य में किसी का पुत्र होने वाला है और वह आत्महत्या करने का प्रयास करे, तो उस आगे होने वाले लड़के का प्रारब्ध उसको मरने नहीं देगा। अगर उस व्यक्ति के द्वारा भविष्य में कोई विशेष अच्छा काम होने वाला हो, लोगों का उपकार होने वाला हो, अथवा इसी जन्म में इसी शरीर में प्रारब्ध का कोई उत्कट भोग आने वाला हो, तो आत्महत्या का प्रयास करने पर भी वह मरेगा नहीं। छठी बात, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया, तो वह उसने पिछले जन्म के बैर का बदला लिया और मरने वाले ने पुराने कर्मों का फल पा लिया, फिर मारने वाले को दोष लगता है या नहीं? मारने वाले को दोष लगेगा। दंड देने का काम शासक का है, सर्वसाधारण का नहीं। जैसे एक आदमी को 10 बजे फांसी मिलती है, किंतु किसी दूसरे आदमी ने उस फांसी की सजा पाने वाले आदमी को जल्लादों के हाथ से छुड़ा लिया और ठीक 10 बजे उसे कत्ल कर दिया, ऐसी हालत में उस कत्ल करने वाले आदमी को भी फांसी होगी कि वह आज्ञा तो राज्य ने जल्लादों को दी थी, पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी? मारने वाले को यह याद नहीं है कि मैं पूर्व जन्म का बदला ले रहा हूं, फिर भी मारता है, तो ये उसका भयंकर दोष ही तो है। दूसरे को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है, मरना कोई भी नहीं चाहता। दूसरे को मारना अपने विवेक का अनादर है। मनुष्य मात्र को विवेक शक्ति प्राप्त है और उस विवेक के अनुसार अच्छे या बुरे कार्य करने में वह स्वतंत्र है। अतः विवेक का अनादर करके दूसरे को मारना अथवा मारने की नियत रखना, ये बड़ा भयंकर दोष है। यदि पूर्व जन्म का बदला एक दूसरे से ऐसे ही चुकाते रहे, तो ये श्रृंखला तो कभी खत्म होगी ही नहीं और मनुष्य कभी मुक्त हो सकता भी नहीं। पिछले जन्म का बदला अन्य योनियों में लिया जा सकता है, मनुष्य योनि बदला लेने के लिए नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि पिछले जन्म का हत्यारा व्यक्ति हमें स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, परंतु बुरा लगने वाले व्यक्ति से द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष है, क्योंकि ये नया कर्म है। जैसा प्रारब्ध है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि बन गई, फिर दोष किस बात का। बुद्धि में जो द्वेष है वह व्यक्ति उस द्वेष के वश में हो गया, यह दोष है। उसे चाहिए कि वह उसके वश में न होकर विवेक का आदर करे। गीता जी ने स्पष्ट कहा है बुद्धि में राग द्वेष रहते हैं, तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक। परंतु इस राग और द्वेष के वश में न हो तयोर न वशमागच्छेत, तीसरे अध्याय का 34वां। 7वां, प्रारब्ध और भगवत कृपा में क्या अंतर है। उत्तर, इस जीव को जो कुछ मिलता है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, पर प्रारब्ध विधान के विधाता स्वयं भगवान है। कारण कि कर्म जड़ होने से स्वतंत्र अपने आप फल देने के लिए नहीं आ सकते, वे तो भगवान के विधान से ही फल देते हैं। जैसे एक आदमी किसी के खेत में दिन भर काम करता है तो उसको शाम के समय काम के अनुसार पैसे मिलते हैं, पर मिलते हैं खेत के मालिक से ही। पैसे तो काम करने से मिले, बिना काम किए पैसे मिलते नहीं। पैसे तो काम करने से ही मिलते हैं, परंतु बिना मालिक के पैसा देगा कौन। यदि कोई जंगल में जाकर दिन भर मेहनत करे तो उसको पैसा कहां से मिलेगा, नहीं मिल सकते। उसमें यह देखा जाएगा किसके कहने से जंगल में जाकर काम किया, जिसके कहने से किया उसके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर कोई नौकर काम को बड़ी तत्परता, चतुरता और उत्साह से करता है, पर करता है केवल मालिक की प्रसन्नता के लिए, तो मालिक उसको मजदूरी से अधिक पैसे दे भी देता है और तत्परता आदि गुणों को देखकर उसको अपने खेत का हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करता है, उसे भगवान दूसरों की अपेक्षा अधिक ही देते हैं। परंतु जो भगवान के सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है, उस भक्त के भगवान भी भक्त बन जाते हैं। संसार में कोई भी नौकर को अपना मालिक नहीं बनाता, परंतु भगवान शरणागत भक्त को अपना मालिक बना देते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभु में ही है। ऐसे प्रभु की शरण न लेकर जो मनुष्य प्राकृत उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के पराधीन रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है। वे इस बात को नहीं समझ सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ हमें कहां तक सहारा दे सकते हैं। इस प्रकार 12वां श्लोक पूरा हुआ।